नमस्कार और ग्रंथसार प्रस्तुत करते हैं एकत्रा फाउंडेशन, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्रा एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार और ग्रंथसार में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी रचना पर बात करने वाले हैं जिसने न जाने कितनी पीढ़ियों को आत्मखोज के लिए प्रेरित किया है। हरमन हेस का उपन्यास सिद्धार्थ।
हाँ बिल्कुल, हेस वो जर्मन स्विस लेखक थे जिन्हें 1946 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला, और उनकी लेखनी में ना आध्यात्मिकता, पहचान की तलाश
और खासकर पूर्वी दर्शन का प्रभाव दिखता है, बौद्ध हिंदू धर्म।
बिल्कुल, और सिद्धार्थ जो 1922 में आई ये उसकी एक बहुत सशक्त मिसाल है। प्राचीन भारत की पृष्ठभूमि है और इसे बिल्डुंग्स रोमान कहते हैं, मतलब
एक नायक के आध्यात्मिक सफर की कहानी, उसके बनने की कहानी। और कहते हैं कि ये हेस के अपने जीवन के संघर्षों का भी आईना है।
हाँ, प्रथम विश्व युद्ध के बाद का दौर, उनकी अपनी खोज, वो सब इसमें झलकता है। और ये किताब सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो जैसे शब्दों में बुना हुआ एक ध्यान है, एक चिंतन।
सही कहा, इसकी लोकप्रियता भी कमाल की रही, खासकर 60 के दशक में पश्चिम में। दिखाता है कि ये जो आत्म साक्षात्कार की प्यास है ये कितनी यूनिवर्सल है। तो आज हम इसी यात्रा को, सिद्धार्थ की ज्ञान और पूर्णता की इस लंबी घुमावदार यात्रा को समझने की कोशिश करेंगे। शुरू कहाँ से करें? शायद उस सवाल से जो उपन्यास के केंद्र में है,
कि क्या सच्चा ज्ञान सिखाया जा सकता है या उसे सिर्फ जिया जा सकता है।
हाँ, सिद्धार्थ इसी सवाल से जूझ रहा है। वो एक बहुत प्रतिभाशाली ब्राह्मण पुत्र है, सब कुछ है उसके पास, मान सम्मान बुद्धि, पर अंदर एक खालीपन है।
उसे वो पारंपरिक रस्में, पूजा पाठ, वो सब खोखला लगता है। मतलब लगता है कि इनसे आत्मा की जो असल प्यास है वो नहीं बुझ रही।
वो आत्मन का, उस परम सत्य का सीधा अनुभव चाहता है जो किसी किताब या गुरु के शब्दों से परे हो।
और यहीं उसकी राह उसके दोस्त गोविंद से अलग होने लगती है। गोविंद को लगता है कि रास्ता गुरु दिखाएगा, समुदाय में मिलेगा।
जबकि सिद्धार्थ को अंदर से लगता है कि नहीं, सत्य तो बहुत निजी चीज है, उसे किसी और के नक्शे कदम पर चलकर नहीं पाया जा सकता, खुद खोजना होगा,
अपने अनुभवों से सीखना होगा।
और इसी सोच के साथ वो घर छोड़ देता है। पिता का स्नेह, एक सुरक्षित भविष्य, सब पीछे। ये उसका पहला बड़ा विद्रोह था परंपरा के खिलाफ।
घर छोड़कर वो और गोविंद श्रमणों के साथ हो लेते हैं, वो तपस्वी जो कठोर साधना करते हैं।
हाँ, शरीर को कष्ट देकर, उपवास करके, ध्यान लगाकर वो अपने स्व को, अपने अहम को मिटाने की कोशिश करते हैं। सिद्धार्थ भी पूरी लगन से ये सब करता है।
उपवास, पीड़ा, जैसे वो अपने अहम को भूखा मार देना चाहता हो।
लेकिन यहाँ उसे एक बात समझ आती है कि ये जो तपस्या है, क्या ये सच में अहम का नाश है या उससे भागने का एक और तरीका?
जैसे कोई नशे में दुख भूलना चाहे।
बिल्कुल, उसे लगता है ये भी एक सिरा है, मंजिल नहीं। खुद को सताने से ज्ञान नहीं मिलेगा, तो वो इसे भी छोड़ देता है। ये उसका दूसरा बड़ा इनकार था बाहरी अनुशासन के प्रति।
इसके बाद वो गौतम बुद्ध के बारे में सुनते हैं, उनसे मिलते भी हैं। बुद्ध की शांति, उनकी प्रज्ञा, सिद्धार्थ काफी प्रभावित होता है।
गोविंद तो तुरंत शिष्य बन जाता है, उसे लगता है बस यही मंजिल है।
हाँ, उसे अपना मार्ग मिल गया लगता है।
पर सिद्धार्थ, वो फिर सवाल करता है बहुत सम्मान से, लेकिन वो बुद्ध से पूछता है, आपकी शिक्षाएं रास्ता दिखाती हैं, दुख का कारण और निवारण बताती हैं, पर वो जो ज्ञान का अनुभव है, वो जो बोध का क्षण है, उसे शब्द कैसे बता सकते हैं?
उसका निष्कर्ष वही रहता है, ज्ञान बांटा नहीं जा सकता, उसे पाना पड़ता है, अनुभव करना पड़ता है।
और वो बुद्ध को भी प्रणाम करके अकेला आगे बढ़ जाता है।
ये शायद सबसे बड़ा कदम था। अब वो किसी गुरु, किसी सिद्धांत के सहारे नहीं, बिल्कुल अकेला।
और बुद्ध को छोड़ने के बाद ना उसे गहरा अनुभव होता है, एक जागरण जैसा। हाँ, उसे अचानक समझ आता है कि वो अब तक स्व से भाग रहा था, उसे मिटाना चाह रहा था।
लेकिन आत्मा को जानने के लिए पहले उस स्व को तो जानना होगा ना जिससे वो भाग रहा है।
सही बात है। तो वो फैसला करता है अब वो किसी दूसरे लोक की, मोक्ष की खोज छोड़कर इसी दुनिया को अपनाएगा, अपनी इंद्रियों को, प्रकृति को, अपने इंसानी अनुभवों को।
वो पहली बार दुनिया को जैसे सचमुच देखता है, रंग, आवाजें, जीवन की धड़कन।
ये एक बहुत बड़ा मोड़ है, दुनिया जो पहले बंधन लगती थी अब सीखने का मैदान बन जाती है। नफरत की जगह प्रेम, भागने की जगह स्वीकार।
वो तय करता है कि वो दुनिया से और खुद से प्रेम करना सीखेगा। यहीं से उसकी यात्रा का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, ज्यादा जटिल शायद।
हाँ, अब वो तपस्वी नहीं रहा, अब वो जीवन के अनुभव में उतरना चाहता है। इसी खोज में वो शहर पहुंचता है और उसकी मुलाकात होती है कमला से,
एक खूबसूरत और काफी बुद्धिमान गणिका। सिद्धार्थ उसमें जीवन का एक अलग ही रंग दिखता है, सौंदर्य, आत्मविश्वास, एक तरह का सांसारिक ज्ञान।
वो उससे प्रेम की कला सीखना चाहता है। कमला मान तो जाती है, पर उसकी एक शर्त है
कि सिद्धार्थ को पहले धन कमाना होगा, सम्मान पाना होगा, इस दुनिया में सफल बनना होगा।
कमला का पात्र बहुत दिलचस्प है। वो सिर्फ वासना का प्रतीक नहीं है, वो भी एक तरह की शिक्षिका है।
हाँ, वो सिद्धार्थ को इंसानी इच्छाओं, रिश्तों, सुख दुख की दुनिया दिखाती है। वो माया है, पर जीवन का एक जरूरी हिस्सा है वो माया।
उनका रिश्ता शुरू में लेन देन का होता है, पर धीरे धीरे उसमें सम्मान और स्नेह भी आता है। लेकिन ये रास्ता उसे कहाँ ले जाएगा, ज्ञान की ओर या भटकाव की ओर? ये सवाल उठता है।
कमला की शर्त पूरी करने के लिए सिद्धार्थ एक व्यापारी कामास्वामी के पास काम सीखता है और बहुत जल्द वो व्यापार में माहिर हो जाता है, खूब पैसा कमाता है।
और फिर सालों तक वो कमला के साथ विलासिता में डूब जाता है, जुआ, शराब, ऐशो आराम।
वो वैसा ही बन जाता है जैसे वो बाल सुलभ लोग थे जिन्हें वो कभी हे दृष्टि से देखता था, मतलब जो सिर्फ दुनियादारी में मग्न रहते हैं।
और यहाँ हेस दिखाते हैं कि कैसे, मतलब कितना भी आध्यात्मिक झुकाव क्यों न हो, इंसान भौतिकता के मुंह में फंस सकता है।
हाँ, जिस दुनिया को समझने निकला था उसी में खो गया, अंदर की आवाज जैसे दब गई।
वो सफलता असल में एक तरह की आध्यात्मिक विफलता बन जाती है।
कई साल ऐसे ही गुजर जाते हैं। सिद्धार्थ अब अधेड़ उम्र का है, अमीर है, पर अंदर से बिल्कुल खोखला, उबा हुआ।
एक रात उसे अपने इस जीवन से घिन आने लगती है। उसे लगता है ये सब बस एक अंतहीन चक्कर है, सुख और थकान का, संसार।
हाँ, वो शब्द संसार, उसके अंदर की वो जो शांत आवाज थी, वो मार्गदर्शक, वो जैसे चुप हो गई है।
और वो आत्मघृणा से घर जाता है, सब कुछ छोड़कर, पैसा, घर, यहाँ तक कि सोती हुई कमला को भी, जिसे पता नहीं कि वो गर्भवती है। वो जंगल की तरफ भाग जाता है इस बार, जीवन खत्म करने के इरादे से।
ये उसकी आत्मा की अंधेरी रात है। सांसारिक अनुभव जरूरी थे, पर वो आखिरी जवाब नहीं थे।
हाँ, उसने तपस्या छोड़ी, फिर भोग को जिया, और दोनों ही उसे खालीपन तक ले आए। अब आगे क्या?
वो भटकते भटकते उसी नदी किनारे पहुंचता है जिसे उसने सालों पहले पार किया था। वो डूबने ही वाला होता है कि अचानक उसे अंदर से एक आवाज सुनाई देती है, एक पवित्र ध्वनि,
ओम।
हाँ, ओम। और ये आवाज जैसे उसे जीवन के स्रोत से फिर जोड़ देती है, उसे बचा लेती है। वो गहरी नींद में सो जाता है।
और जागने पर?
जागने पर वो बिल्कुल बदला हुआ है, तरोताजा, निराशा से मुक्त। तभी वो अपने पुराने दोस्त गोविंद को देखता है जो अब बौद्ध भिक्षु है, पर गोविंद उसे पहचान नहीं पाता।
और सिद्धार्थ फैसला करता है कि वो अब यहीं रहेगा, नदी के किनारे, नदी से सीखेगा।
और यही उसकी मुलाकात होती है वासुदेव से, एक बूढ़े शांत नाविक से जिसके चेहरे पर एक गहरी समझ वाली मुस्कान है।
नदी और ओम, ये प्रतीक कितने गहरे हैं। नदी मतलब जीवन का बहाव, समय, ज्ञान का स्रोत,
और ओम वो एकता की ध्वनि। और वासुदेव, वो कोई उपदेशक नहीं है, वो बस सुनता है।
उसका ज्ञान किताबों का नहीं, नदी को सुनने का है। वो सिद्धार्थ को बस यही कहता है, नदी को सुनो।
सिद्धार्थ वासुदेव का साथी बन जाता है, नाव चलाते हैं, लोगों को पार उतारते हैं, और सिद्धार्थ सुनता है धैर्य से।
नदी की आवाजों में उसे जीवन के सारे रंग सुनाई देते हैं, हंसी, रोना, गुस्सा, चाहत।
और धीरे धीरे इन हजारों आवाजों के पीछे उसे एक ही महाध्वनि सुनाई देने लगती है, एकता की, पूर्णता की। वो सीखता है कि सब जुड़ा हुआ है, कुछ भी बेकार नहीं।
वासुदेव का चरित्र दिखाता है कि सच्चा ज्ञान कितना सहज, कितना आडंबरहीन होता है। वो बिना जज किए सुनता है, अहंकार से मुक्त।
सिद्धार्थ को उसमें वही शांति मिलती है जो बुद्ध में दिखी थी, पर अब वो शांति बाहर नहीं, अंदर महसूस होने के करीब है। ये रिश्ता बराबरी का है।
कई साल ऐसे ही शांति से बीतते हैं, फिर एक दिन कहानी में एक और मोड़ आता है।
हाँ, कमला, जो अब बौद्ध उपासिका बन चुकी है, अपने बेटे के साथ बुद्ध के अंतिम दर्शन के लिए जा रही होती है। नदी किनारे उसे सांप काट लेता है
और वो सिद्धार्थ की बाहों में दम तोड़ देती है। अपने 11 साल के बेटे को, जिसका नाम भी सिद्धार्थ है, पिता के पास छोड़कर बहुत गहरा प्यार महसूस करता है। पर ये प्यार दर्द देता है।
बेटा शहर का आदी है, उसे पिता का ये सीधा साधा जीवन पसंद नहीं। वो जिद्दी है, विद्रोही है, पिता का अपमान करता है।
सिद्धार्थ उसे जीतने की, अपने पास रखने की बहुत कोशिश करता है, पर नाकाम रहता है।
ये अनुभव सिद्धार्थ के अंदर जो भी थोड़ा बहुत आध्यात्मिक अभिमान बचा था उसे तोड़ देता है। उसे उन आम लोगों के लिए सहानुभूति महसूस होती है जिनसे वो कभी नफरत करता था।
वो समझता है कि प्रेम का मतलब सिर्फ मोह या अधिकार नहीं है, कभी कभी प्रेम का मतलब होता है जाने देना।
उसे अपने पिता का दर्द याद आता है जब उसने घर छोड़ा था। उसे एहसास होता है कि बेटे को उसका अपना रास्ता खोजने देना होगा, जैसे उसने खुद खोजा था।
ये ज्ञान उसे किसी उपदेश से नहीं मिला, टूटे हुए दिल से मिला।
बेटे के जाने के बाद सिद्धार्थ नदी में देखता है। दिल टूटा हुआ है पर दृष्टि साफ है। उसे सब कुछ एक साथ दिखता है, अपने पिता का दुख, अपना जीवन, अपने बेटे का भविष्य, सब एक ही प्रवाह में।
उसे समझ आता है कि समय असल में एक भ्रम है। अतीत, वर्तमान, भविष्य सब यहीं है, इसी पल में।
पाप और पुण्य, सुख और दुख, सब जीवन की बड़ी तस्वीर का हिस्सा हैं। कुछ भी अलग नहीं, कुछ भी व्यर्थ नहीं।
और वो नदी का गीत सुनता है, और अब वो आवाज बिल्कुल साफ है, ओम, पूर्णता। बस उसी क्षण उसे ज्ञान मिल जाता है।
हाँ, बिल्कुल सहजता से। वासुदेव ये देखकर मुस्कुराते हैं, उनका काम पूरा हो गया, और वो चुपचाप जंगल में चले जाते हैं, जैसे उसी एकता में विलीन हो गए हों।
ज्ञान का वो पल कितना शांत है। कोई शोर नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस एक गहरी आत्मिक समझ। उसने दुनिया को छोड़ा नहीं, उसे पूरी तरह जिया और उसी से सत्य तक पहुंचा।
तपस्या और भोग दोनों रास्ते अधूरे थे, पर दोनों के अनुभव जरूरी थे मंजिल तक पहुंचने के लिए।
कहानी के आखिर में बूढ़ा गोविंद आता है। वो अभी भी सत्य की तलाश में है। वो उस ज्ञानी नाविक के बारे में सुनकर आया है,
पर वो सिद्धार्थ को पहचान नहीं पाता। सिद्धार्थ कहता है, दोस्त, ज्ञान शब्दों में नहीं दिया जा सकता, और हर सच का उल्टा भी उतना ही सच होता है।
ये हैस का मूल विचार है शायद, द्वैत से परे जाना। अच्छा बुरा, सही गलत, ये सब सापेक्ष हैं। सत्य इन विरोधाभासों को समेट लेता है।
गोविंद को शक होता है, तब सिद्धार्थ उसे अपने माथे को चूमने को कहता है।
और जैसे ही गोविंद ऐसा करता है,
उसे सिद्धार्थ का चेहरा नहीं दिखता। उसे हजारों चेहरे, रूप, जीव जंतु, घटनाएं, पूरी सृष्टि एक अनंत धारा में बहती हुई दिखती है, सब एक।
गोविंद रो पड़ता है।
उसे शब्दों से नहीं, अनुभव से बोध होता है। वो सिद्धार्थ को प्रणाम करता है, और सिद्धार्थ के चेहरे पर वही शांत, समझ भरी मुस्कान है।
क्या अद्भुत अंत है। ये दिखाता है कि सिद्धार्थ ने न सिर्फ ज्ञान पाया, बल्कि वो उसे अनुभव कराने में भी सक्षम हो गया, शब्दों के पार जाकर। तो इस पूरी यात्रा से जो मुख्य बातें उभरती हैं, पहली तो यही कि व्यक्तिगत अनुभव सबसे ज़रूरी है। किताबी ज्ञान या दूसरों की बातें, वो तब तक अधूरी हैं जब तक खुद अनुभव न हो।
हाँ, और दूसरी, अस्तित्व की एकता। सब कुछ जुड़ा हुआ है, नदी की तरह। सुख, दुख, जन्म, मृत्यु, सब एक ही भाव का हिस्सा हैं। समय का सीधा चलना भी एक भ्रम है। सब कुछ अभी, इसी पल में है।
बिल्कुल, और इसी से जुड़ा है विरोधाभासों को स्वीकारना। आध्यात्मिक और भौतिक, पवित्र और सांसारिक, ये अलग नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सिद्धार्थ को दोनों अनुभवों से गुजरना पड़ा।
और प्रेम, खासकर कमला और बेटे से मिला प्रेम, वो भी एक बड़ा रास्ता बनकर सामने आता है। वो प्रेम उसे विनम्र बनाता है, दूसरों का दर्द समझना सिखाता है। शायद सबसे गहरा पाठ यही है, इंसानियत से जुड़ना।
हैस की लिखने की शैली भी बहुत खास है, सरल लेकिन गीतात्मक, जैसे कोई पुरानी कथा सुन रहे हों। भाषा में एक काव्यात्मकता है।
हाँ, और वर्णन सिद्धार्थ के मन के बहुत करीब रहता है। हम पाठक भी जैसे उसके साथ ही यात्रा कर रहे होते हैं। नदी, मुस्कान, नाविक, ये प्रतीक कहानी को और गहरा बनाते हैं।
इसका असर क्या होता है पढ़ने वाले पर? शायद एक शांति मिलती है, एक आत्मचिंतन का मौका।
और ये एहसास के जीवन जीने का कोई एक सही तरीका नहीं होता। गलतियां, भटकना, दुख, ये सब यात्रा का हिस्सा हैं, नाकामी नहीं। ये किताब आत्मस्वीकारता सिखाती है, धैर्य सिखाती है।
शायद सबसे बड़ा सवाल जो ये छोड़ जाती है वो ये है कि मेरे जीवन की नदी क्या है? मैं किसे सुनना शुरू कर सकता हूँ अगर मैं सिर्फ खोजना बंद कर दूँ?
सचमुच, ये उपन्यास यही तो सिखाता है कि शायद सबसे बड़ा ज्ञान खोजने में नहीं, सुनने में है। जीवन को, खुद को, आसपास की दुनिया को, बिना किसी पूर्वाग्रह के।
हाँ, सच्चा ज्ञान बाहरी सिद्धांतों में नहीं, बल्कि जीवन के प्रवाह को ध्यान से सुनने और हर अनुभव को, चाहे वो सुखद हो या दुखद, खुले दिल से अपनाने में है। यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।